अध्याय 32 व्यवस्था और वाचा। आदम और हवा को उनकी सृष्टि के समय परमेश्वर की व्यवस्था का बोध था। उन पर उसके अधिकारों से वे परिचित थे, उसके सिद्धांत उनके हृदयों पर लिखित थे। जब आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य का पतन हुआ, उस समय व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं आया, लेकिन मनुष्य को आज्ञाकारिता में पुनः लाने के लिए एक सुधारात्मक प्रणाली की स्थापना की गई, एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा दी गई और पाप बलि के रूप में मसीह की मृत्यु की ओर संकेत करने वाले बलिदान संबंधी भेंटों की नींव डाली गई। लेकिन यदि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाता तो मृत्यु नहीं होती और न ही उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती। इस कारण से बलिदान की आवश्यकता भी नहीं होती। आदम ने अपने वंशजों को परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान कराया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पिता द्वारा पुत्र को सौंपा गया। लेकिन मनुष्य के उद्धार के लिए अनुग्रहकारी प्रयोजन के बावजूद बहुत कम लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसका पालन किया। आज्ञा उल्लंघन के फलस्वरूप संसार इतना भ्रष्टतापूर्ण हो गया कि जल प्रलय द्वारा इसे इसके भ्रष्टाचार से मुक्त कराना अनिवार्य हो गया। नूह और उसके परिवार ने व्यवस्था को संरक्षित रखा और नूह ने अपने वंशजों को 10 आज्ञाओं की शिक्षा दी। जब मनुष्य एक बार फिर परमेश्वर से दूर हो गया, प्रभु ने अब्राहम को चुना, जिसके बारे में उसने घोषणा की, अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26:5। उसे खतने की रीति दी गई, जो एक प्रतीक था कि जो भी खतने की रीति को अपनाते हैं वे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हैं। ये एक शपथ थी कि वे मूर्ति पूजा से अलग रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। अब्राहम के वंशजों की इस शपथ का निर्वाह करने में असफलता, जो अधर्मियों के साथ उनके संबंध स्थापित करने के व्यवहार में और उसके रीति रिवाजों को अपनाने में दिखाई गईं, मिस्र में उनके दासत्व और अस्थायी निवास का कारण थी। लेकिन मूर्ति पूजकों के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार में और मिम्रियों के प्रति उनके बलात् समर्पण में ईश्वरीय धर्मादेश मूर्ति पूजा के भ्रष्ट और निष्ठुर अध्यापन से और अधिक दूषित हो गए। इस कारण जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकालकर लाया, वो महिमा में लिपटा हुआ और स्वर्गदूतों से घिरा हुआ सिने पर्वत पर उतरा और महिमामय अधिकार से अपनी व्यवस्था को बताया, जिसे सब लोगों ने सुना। तब भी उसने अपने नियमों को उन लोगों की स्मृति के भरोसे नहीं छोड़ा जो स्वयं उसकी अपेक्षाओं को भूलने के अभ्यस्त थे, बल्कि उसने उन आज्ञाओं को पत्थर की पटियाओं पर लिखा। वो इज़राइल अपने पवित्र नियमों और मूर्ति पूजक परंपराओं के बीच मेलजोल या उसकी अपेक्षाओं को मानवीय अध्यादेशों या प्रथाओं द्वारा पराजित होने की प्रत्येक संभावना को दूर कर देना चाहता था। लेकिन वो उन्हें 10 नियमों के सिद्धांत देकर रुक नहीं गया। लोगों ने आसानी से पथ शभ्रष्ट हो जाने का प्रमाण दिया था, इसलिए वो उनके लिए प्रलोभन का कोई भी द्वार असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहता था। मूसा को आदेश दिया गया कि परमेश्वर के निर्देशानुसार वो अपेक्षा संबंधी विस्तार पूर्वक निर्देश देते हुए दंडाज्ञाओं और नियमों को लिखे। यह निर्देश जो मनुष्य का परमेश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति व अपरिचित के प्रति कर्तव्य से संबंधित है, ये 10 आज्ञाओं के सिद्धांत ही थे, जिन्हें विस्तार पूर्वक और विशिष्ट तरीके से दिया गया है ताकि कोई गलती नहीं कर सके। इन्हें पत्थर की पटियाओं पर उत्कीर्ण 10 आज्ञाओं की पवित्रता की रक्षा के लिए योजनाबद्ध किया गया था। यदि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को माना होता, जैसे आदम को उसके पतन के पश्चात दी गई, नूह द्वारा संरक्षित रखी गई, अब्राहम द्वारा मानी गई, तो खतना के अध्यादेश की आवश्यकता नहीं होती। और यदि अब्राहम के वंशजों ने वाचा का निर्वाह किया होता, जिसका प्रतीक खतना था, तो वे कभी भी मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित नहीं होते और ना ही उन्हें मिस्र में दासत्व का कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता। वे परमेश्वर की व्यवस्था को अपने मन में रख लेते तो उसे पत्थर की पटियाओं पर उत्कीर्ण करने या सिने पर्वत से घोषित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यदि लोगों ने 10 आज्ञाओं के सिद्धांतों का अभ्यास किया होता तो मूसा को दिए गए अतिरिक्त निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। आदम को सौंपी गई बलिदान संबंधी प्रणाली भी उसके वंशजों द्वारा विकृत कर दी गई। परमेश्वर द्वारा नियुक्त सरल और अर्थपूर्ण उपासना को अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, नृशंसता और अस्वच्छता ने भ्रष्ट कर दिया। मूर्ति पूजकों के साथ चिरकालीन पारस्परिक व्यवहार के माध्यम से इसराइलियों ने अपनी आराधना में कई मूर्ति पूजक रीति रिवाज मिला लिए थे। इस कारण प्रभु ने सिने पर्वत पर से बलिदान संबंधी प्रणाली संबंधित स्पष्ट निर्देश दिए। पवित्र मंडप के समापन के पश्चात उसने प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर महिमा के बादल में से मूसा के साथ संपर्क किया और मिलाव वाले तंबू में कायम रखने वाले आराधना के प्रकारों को और भेंटों की प्रणाली से संबंधित संपूर्ण निर्देश दिए। इस प्रकार मूसा को रीति संबंधित व्यवस्था दी गई और उसके द्वारा पुस्तक में लिखी गईं। लेकिन सिने पर्वत से उच्चारित 10 आज्ञाओं की व्यवस्था स्वयं परमेश्वर द्वारा पत्थर की पटियाओं पर लिखी गई और संदूक में श्रद्धापूर्वक संरक्षित किया गया। ये प्रमाणित करने के लिए कि आचरण संबंधी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कई लोग रीति संबंधी व्यवस्था की व्याख्या करने वाले अवतरणों का प्रयोग करते हुए इन दोनों व्यवस्थाओं को मिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये पवित्र शास्त्र को विकृत करना है। दोनों व्यवस्थाओं के बीच भिन्नता व्यापक व स्पष्ट है। रीति संबंधी व्यवस्था मसीह, उसके बलिदान और उसकी याजकता की ओर संकेत करने वाले प्रतीकों से बनी थी। इस संस्कार संबंधी व्यवस्था का पालन बलिदानों और अध्यादेशों सहित इब्रानियों द्वारा जगत के पापों को निवारण करने वाले मेमने मसीह की मृत्यु में नए और पुराने का मिलन होने तक किया जाना था। तत्पश्चात सभी बलिदानों संबंधी भेंटों को बंद हो जाना था। यही वो विधि है जिसे मसीह ने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कुलुसियों 2:14। लेकिन 10 आज्ञाओं की व्यवस्था के संदर्भ में भजन संहिता में लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। और मसीह स्वयं कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को नष्ट करने आया हूं, तुमसे सत्य कहता हूं। और फिर अपने दावे को यथासंभव ओजपूर्ण बनाने के लिए वो कहता है, जब तक आकाश और पृथ्वी ढल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मत्ती 5:17-18। ये वो केवल यही नहीं सिखाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था का अधिकार क्या रहा होगा और उस समय क्या था, वरन ये भी कि ये अधिकार पृथ्वी और आकाश के अस्तित्व में होने तक रहेगा। परमेश्वर की व्यवस्था उतनी ही अपरिवर्तनीय है जितना कि उसका सिंहासन। वो युगों तक मानव जाति पर अपना अधिकार कायम रखेगी। सिने पर्वत पर घोषित व्यवस्था के संदर्भ में नेहमिया कहता है, फिर तूने सिने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सही नियम, सच्ची व्यवस्था, अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। नेहमिया 9:13। और अन्य जातियों के लिए प्रेरित पौलुस कहता है, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र, न्याय संगत और अच्छी है। रोमियो 7:12। ये 10 आज्ञाओं को छोड़ और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवस्था ही ये कहती है, तू लालच मत कर। रोमियो 7:7। हालांकि उद्धारकर्ता की मृत्यु ने परछाइयों और प्रतिरूपों की व्यवस्था का अंत कर दिया, लेकिन आचरण संबंधी व्यवस्था में से उसने कुछ भी कम नहीं किया। इसके विपरीत ये तथ्य कि व्यवस्था के उल्लंघन के लिए प्रायश्चित करने के लिए मसीह को मृत्यु स्वीकार करना अनिवार्य था, प्रमाणित करता है कि आचरण संबंधी व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। जो ये दावा करते हैं कि मसीह परमेश्वर की व्यवस्था का निराकरण करने और पुराने नियम को रद्द करने आया, वे यहूदी काल को अंधकार का युग कहते हैं और इब्रियों के धर्म को केवल रीतियों और अनुष्ठानों से बना होना मानते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। पवित्र इतिहास में आरंभ से अंत तक जहां परमेश्वर का मनुष्य के साथ व्यवहार का उल्लेख है, वहां उस महान मैं हूं के प्रबल संकेत हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्रों के सम्मुख अपनी महिमा और सामर्थ का इससे अधिक स्पष्ट प्रदर्शन कभी नहीं किया, जैसा कि उसने तब किया जब केवल उसे इज़राइल का शासक माना गया और जब उसने अपने लोगों को व्यवस्था प्रदान की। यहां वो राजदंड था जो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं था, और इज़राइल के अदृश्य राजा का गौरवयुक्त नेतृत्व अकथनीय रूप से भव्य और महिमामय था। पवित्र उपस्थिति के इन सब प्रदर्शनों में मसीह के माध्यम से परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। केवल उद्धारकर्ता के आगमन पर ही नहीं, वरन पतन और उद्धार की प्रतिज्ञा के बाद के सभी युगों में परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। दूसरा कुरंथियों 5:19। कल्पतियों के और यहूदी काल दोनों में मसीह बलिदान संबंधी प्रणाली का केंद्र बिंदु और आधार था। हमारे प्रथम अभिभावकों के पाप के समय से परमेश्वर और मनुष्य में प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा है। पिता ने जगत को मसीह के हाथों में सौंप दिया है, ताकि उसकी मध्यस्थता के कार्य के माध्यम से वह मनुष्य को पाप से मुक्त करा सके और परमेश्वर की व्यवस्था की पवित्रता और अधिकार को न्याय संगत सिद्ध कर सके। स्वर्ग और पतित जाति के बीच समस्त सहभागिता मसीह के माध्यम से हुई है। परमेश्वर के पुत्र ने ही हमारे प्रथम अभिभावकों को उद्धार की प्रतिज्ञा दी। उसी ने स्वयं को कुल पिताओं आदम, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब के सम्मुख प्रकट किया, और मूसा ने सुसमाचार को समझा। वे मनुष्य के प्रतिनिधि और प्रतिभू के द्वारा उद्धार की बाट जोहते थे। प्राचीन काल के ये सिद्ध पुरुष उस उद्धारकर्ता से संपर्क करते थे जो देहधारी होकर जगत में आने वाला था, और इनमें से कुछ मसीह और स्वर्गदूतों के साथ आमने सामने होकर बात करते थे। जब इब्री निर्जन प्रदेश में थे, मसीह केवल उनका अगुवा ही नहीं था, वह स्वर्गदूत जिसमें यहोवा का नाम था और जो बादल के स्तंभ में आवृत सेनाओं के आगे आगे गया, वरन उसी ने इज़राइल को व्यवस्था दी। सिने की विस्मयकारी महिमा के बीच मसीह ने सबके सुनने की पहुंच में अपने पिता की व्यवस्था के 10 नियमों की घोषणा की। उसी ने मूसा को पत्थर की पटियाओं पर उत्कीर्ण व्यवस्था दी। वह मसीह ही था जो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अपने लोगों के साथ बात करता था। मसीही कलीसिया को लिखते हुए प्रेरित पत्रस कहता है कि भविष्यवक्ताओं ने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यद्वाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। पहला पत्रस 1:140-111। वह मसीह का स्वर है जो पुराने नियम के द्वारा हमसे बात करता है। यीशु की गवाही भविष्यद्वाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 19:10। जब यीशु व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के बीच में था, अपने प्रचार में उसने मनुष्य का ध्यान पुराने नियम की ओर आकर्षित किया। उसने यहूदियों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। यूहन्ना 5:39। इस समय पुराने नियम की पुस्तकें विद्यमान बाइबल का एकमात्र भाग थी। फिर से परमेश्वर के पुत्र ने घोषणा की, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। इसके अतिरिक्त उसने कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। लूका 16:29-31।
सांस्कारिक व्यवस्था मसीह द्वारा दी गई, उसका पालन करने की आवश्यकता न होने के बाद भी मसीह के कार्य के साथ उसका संबंध और उद्धार की योजना में उसका स्थान दिखाते हुए पौलुस ने यहूदियों के सम्मुख इस व्यवस्था को इसके वास्तविक स्थान और महत्व सहित प्रस्तुत किया, और महान प्रेरित इस व्यवस्था को महिमामय और इसके पवित्र प्रवर्तक के योग्य घोषित करता है। मिलाप वाले तंबू की पवित्र आराधना उन महान सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करती है जो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में प्रकट होनी थी। इज़राइल की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर उठता हुआ धूप का धुआं प्रतीक है उसकी धार्मिकता का, जो पापी मनुष्य की प्रार्थना को परमेश्वर द्वारा स्वीकार्य ठहरने का अकेला माध्यम है। बलि की वेदी पर लहूलुहान बलि का पशु आने वाले उद्धारकर्ता का प्रमाण था, और पवित्रों के पवित्र से ईश्वरीय उपस्थिति का सदृश प्रतीक दिखाई दिया। इस प्रकार अंधकार और अधर्म के एक के बाद एक युग के दौरान प्रतिश्रुत मसीह के आगमन का समय आने तक विश्वास को मनुष्यों के हृदयों में जीवित रखा गया। पृथ्वी पर देहधारी होकर आने से पहले यीशु अपने लोगों के लिए ज्योति था, जगत की ज्योति। प्रकाश की पहली किरण अंधकार को बेधकर वो मसीह से आई, और पृथ्वी के वासियों पर पड़ने वाली स्वर्ग के प्रकाश की प्रत्येक किरण उसी में से आई है। उद्धार की योजना में अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मसीह है। जब से उद्धारकर्ता ने पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया और हमारे लिए परमेश्वर के सम्मुख दिखाई देने के लिए स्वर्ग को गया, स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थानों से और कलवरी के क्रूस से प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। लेकिन हमको प्रदान किए गए निर्मल प्रकाश के कारण उस प्रकाश को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, जो प्राचीन समय में आने वाले उद्धारकर्ता की ओर संकेत करने वाले प्रतिरूपों के द्वारा प्राप्त किया जाता था। मसीह का सुसमाचार यहूदी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है और सांस्कारिक व्यवस्था को महत्व देता है। जैसे जैसे नए सत्य सामने आते हैं और जो सत्य आदि से ज्ञात है और स्पष्ट होते हैं, परमेश्वर के प्रयोजन और उसका स्वभाव उसके अपने चुने हुए लोगों के साथ व्यवहार में प्रकट होते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त किरण जो हमें प्राप्त होती है, उद्धार की योजना से संबंधित हमारी समझ को और स्पष्ट करती है, जो मनुष्य के उद्धार में परमेश्वर की इच्छा का संपन्न होना है। प्रेरित वचन में हम नई मनोहरता और बल देखते हैं, और हम उसके पृष्ठों को और गहराई और ध्यानमग्न होकर पढ़ते हैं। कई लोगों की ये धारणा है कि परमेश्वर ने इब्रानियों और पराय जगत के बीच एक वियोजक दीवार रखी है, ये कि उसका प्रेम और ध्यान इज़राइल पर केंद्रित था और काफी हद तक शेष मानव जाति के प्रति उदासीन था। लेकिन परमेश्वर की ये योजना नहीं थी कि मनुष्य अपने और दूसरों के बीच में बंटवारे की दीवार खड़ी करें। अनंत प्रेम का हाथ पृथ्वी के सभी वासियों की ओर बढ़ रहा था। यद्यपि जगत ने उसका तिरस्कार किया, वो स्वयं को उन पर प्रकट करने और उन्हें अपने अनुग्रह और प्रेम का भागीदार बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील था। चुने हुए लोगों को उसकी आशीष दी गई ताकि वे दूसरों को धन्य करें। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे समृद्ध और सम्मानित किया, और इस कुलपिता की स्वामी भक्ति उन सभी देशों में जहां उसने पड़ाव डाला लोगों के लिए प्रकाश थी। अब्राहम ने स्वयं को अपने आसपास के लोगों से अलग नहीं कर लिया। उसने पड़ोसी देशों के राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखे, और इनमें से कई राजाओं ने उसके साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया। उसकी सत्यनिष्ठा, निस्वार्थता, साहस और उदारता परमेश्वर के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। मेसोपोतामिया में, कनान में, मिस्र में और सदोम वासियों को भी स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया। इसी प्रकार मिस्र के लोगों और उस शक्तिशाली राज्य से संबद्ध सभी राज्यों में परमेश्वर ने यूसुफ के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्रियों के बीच इतना उच्च सम्मान देना क्यों चुना? याकूब की संतानों के प्रति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो कोई अन्य साधन उपलब्ध करा सकता था, लेकिन वो यूसुफ को प्रकाश समान बनाना चाहता था, और उसने यूसुफ को राजा के महल में स्थापित किया ताकि स्वर्गीय प्रकाश दूर और पास फैल सके। अपनी बुद्धिमता और न्याय संगतता से, अपने दैनिक जीवन की पवित्रता और उदारता से, लोगों की भलाई के लिए अपनी लगन से, जबकि वे लोग मूर्ति पूजक थे, यूसुफ मसीह का प्रतिनिधि था। उनके हितकारी में, जिसके पास समस्त मिस्र धन्यवाद और प्रशंसा के साथ जाते थे, उन मूर्ति पूजकों को उनके सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के प्रेम को देखना था। इसी प्रकार मूसा के रूप में परमेश्वर ने पृथ्वी के महानतम राज्य के सिंहासन के पास ज्योति को स्थापित किया ताकि वे सभी जो चाहते थे जीवित और सच्चे परमेश्वर के बारे में जानें। परमेश्वर द्वारा दंडाज्ञा के लिए हाथ बढ़ाए जाने से पहले ये प्रकाश मिस्र के लोगों को दिया गया। मिस्र से इज़राइल के छुटकारे में परमेश्वर के सामर्थ्य की जानकारी दूर दूर तक फैल गई। यरीहो के गढ़ के रणकुशल लोग कांपने लगे। रहाब ने कहा, ये सुनते ही हमारा हृदय पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी में साहस नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। यहोशू 2:41। निर्गमन के सदियों पश्चात पलिश्तियों के याजकों ने लोगों को मिस्र की विपत्तियों का स्मरण कराया और इज़राइल के परमेश्वर का प्रतिरोध करने के विरुद्ध चेतावनी दी। परमेश्वर ने इज़राइल को बुलाया और उन्हें आशीषित और गौरवान्वित किया, इसलिए नहीं कि उसकी व्यवस्था का पालन करने से केवल वही उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें और उसकी आशीषों का विशेष प्राप्तकर्ता बने, वरन इसलिए कि उनके द्वारा वो पृथ्वी के सभी वासियों के लिए स्वयं को प्रकट कर सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने उन्हें अपने आप को पड़ोसी मूर्ति पूजक देशों से अलग रखने की आज्ञा दी। मूर्ति पूजा और उसकी श्रृंखला में होने वाले सभी पाप परमेश्वर के लिए घृणास्पद थे। परमेश्वर ने आदेश द्वारा लोगों को अन्य देशों के साथ मेलजोल बढ़ाने से व उनके जैसे काम करके परमेश्वर को भूल जाने से मना किया था। उसने उन्हें मूर्ति पूजकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से भी मना किया, ताकि उनके हृदय उससे दूर न हो जाएं। ये तब भी उतना ही आवश्यक था जितना कि अब है कि परमेश्वर के लोग स्वयं को शुद्ध और संसार से निष्कलंक रखे। मूर्ति पूजा की विचारधारा से भी उन्हें स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहिए, क्योंकि वो सत्य और धार्मिकता के विरुद्ध है। लेकिन परमेश्वर का ये अभिप्राय नहीं था कि आत्मधर्मपरायण गैर मिलनसारिता में उसके लोग जगत से अपने आप को परे रख लें, जिससे वे उस पर प्रभाव न डाल सकें। अपने स्वामी की तरह मसीह के अनुयायियों को हर युग में जगत की ज्योति होना था। उद्धारकर्ता ने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता, और दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है, जिसका तात्पर्य जगत से है। और वह आगे कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मत्ती 5:14-16। हनोक, नू, अब्राहम, यूसुफ और मूसा ने ठीक ऐसा ही किया। इसराइलियों के लिए भी परमेश्वर की यही योजना थी। शैतान द्वारा नियंत्रित वह उनका दुष्ट हृदय ही था जिसने उन्हें पड़ोसी राष्ट्रों पर प्रकाश बिखरने के बजाय उसे छुपाने का आग्रह किया। ये वही धर्मांध भावना थी जिसके कारण या तो वे मूर्ति पूजकों की अधर्मी प्रथाओं का अनुसरण करने लगे या अहंकारी अनन्यता में स्वयं को अलग रखने लगे, मानो परमेश्वर का प्रेम और सुरक्षा केवल उन्हीं के लिए हो। जैसे बाइबल दो व्यवस्थाओं का वर्णन करती है, एक अपरिवर्तनीय और सनातन और दूसरी अल्पकालीन और सामयिक, और इसी प्रकार वाचाएं भी देती है। अनुग्रह की वाचा सर्वप्रथम मनुष्य के साथ अदन की वाटिका में बांधी गई, जब पतन के पश्चात ये पवित्र प्रतिज्ञा दी गई कि मनुष्य का पुत्र सर्प के सिर को कुचल डालेगा। ये वाचा सभी मनुष्यों को मसीह में विश्वास के द्वारा भविष्य में आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर का सहायक अनुग्रह और क्षमादान प्रदान करती थी। मनुष्य के परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति सत्यनिष्ठा दिखाने पर वो उन्हें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देती थी। इस प्रकार कुल पिताओं ने उद्धार की आशा को पाया। उत्पत्ति 22:18 में उल्लिखित प्रतिज्ञा, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी में अब्राहम को ये वाचा दोहराई गई। इस प्रतिज्ञा ने मसीह की ओर संकेत किया। अब्राहम ने इसे समझ लिया। गलातियों 3:8-16 देखिए। और उसने पापों की क्षमा के लिए मसीह में विश्वास रखा। इसी विश्वास के आधार पर उसे धर्मी ठहराया गया। अब्राहम के साथ बांधी वाचा ने परमेश्वर की व्यवस्था के अधिकार को कायम रखा। यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17:1। अपने निष्ठावान सेवक से संबंधित परमेश्वर की गवाही थी, अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26:5। और परमेश्वर ने उसके सम्मुख घोषणा की, मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। उत्पत्ति 17:7। यद्यपि ये वाचा आदम के साथ बांधी गई और अब्राहम के साथ दोहराई गई, मसीह की मृत्यु तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। उद्धार की प्रथम सूचना के दिए जाने के समय से ये वाचा परमेश्वर की प्रतिज्ञा द्वारा अस्तित्व में थी। इसे विश्वास द्वारा ग्रहण की गई थी, लेकिन मसीह द्वारा प्रमाणित होने के बाद ये नई वाचा कहलाई। परमेश्वर की व्यवस्था इस वाचा का आधार थी, जो मनुष्य को वहां स्थापित कर जहां वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते थे। ईश्वर की इच्छा के साथ मनुष्य का सामंजस्य पुनः स्थापित करने का केवल एक प्रबंध थी। दूसरा समझौता, पवित्र। शास्त्र में जिसे पुरानी वाचा कहा जाता है, सिने में इज़राइल और परमेश्वर के बीच हुआ, और इसकी पुष्टि बलिदान के लहू द्वारा हुई, और उसे दूसरी या नई वाचा कहा जाता है, क्योंकि जिसे लहू के द्वारा इसे प्रमाणित किया गया वो प्रथम वाचा के लहू के बाद बहाया गया। अब्राहम के समय में नई वाचा का मान्य होना इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वो उस समय परमेश्वर की शपथ और उसकी प्रतिज्ञा दोनों के द्वारा सुनिश्चित की गई, दो अपरिवर्तनीय बातों के द्वारा जिनके बारे में परमेश्वर कभी झूठ नहीं कह सकता। इब्रानियों 6:18। लेकिन यदि अब्राहमी वाचा में उद्धार की प्रतिज्ञा निहित थी, तो सिने पर दूसरी वाचा क्यों तैयार की गई? दासत्व की अवस्था में लोग काफी हद तक परमेश्वर के ज्ञान और अब्राहमी वाचा के सिद्धांतों को खो चुके थे। मिस्र से उन्हें छुटकारा दिलाने में परमेश्वर उन पर अपनी करुणा और सामर्थ्यस्त को प्रकट करना चाहता था, जिससे कि वे उससे प्रेम करने लगे और उस पर विश्वास ला सकें। वो उन्हें लाल समुद्र तक लाया, जहां मिस्रियों द्वारा पीछा किए जाने के कारण उनका बचकर निकल जाना असंभव था। उसने उनके अस्थायी दासत्व से छुटकारा दिलाने वाले के रूप में स्वयं को उनके साथ बांध रखा था। लेकिन इससे भी महान एक और सत्य था जिसे उनके मन में अंकित किया जाना था। मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार के बीच रहते हुए उनके पास परमेश्वर की पवित्रता की, अपने व्यक्तिगत हृदयों की अत्यधिक पापमयता की, परमेश्वर उद्धारकर्ता की आवश्यकता की सही धारणा नहीं थी। उन्हें ये सब सिखाना अनिवार्य था। परमेश्वर ने उन्हें सिने पर अपनी व्यवस्था दी और साथ ही आज्ञाकारिता की शर्त पर अत्यधिक आशीषों का वचन भी दिया। यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। निर्गमन 19:5-6। लोगों को उनके अपने हृदय की पापमयता का एहसास नहीं हुआ, और ना ही इस बात का कि मसीह के अभाव में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना असंभव था, और वे तत्परता से परमेश्वर के साथ वाचा में बंध गए, ये सोचकर कि वे अपनी धार्मिकता को स्वयं सिद्ध करने में समर्थ थे। उन्होंने घोषणा की, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। निर्गमन 24:7। व्यवस्था की प्रभावशाली व तेजोमय घोषणा के वे साक्षी थे, और पर्वत के सम्मुख वे डर से कांप उठे थे। लेकिन फिर भी कुछ ही वर्ष बीते थे कि उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को खंडित कर दिया, एक गढ़ी हुई आकृति के आगे भक्तिभाव से दंडवत किया। स्वयं के द्वारा तोड़ी गई वाचा के माध्यम से वे परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आशा नहीं कर सकते थे, और अब उनकी पापमयता और क्षमादान की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें बलिदान संबंधी भेंटों में प्रतिबिंबित और अब्राहमी वाचा में प्रकट की गई मनुष्य के लिए उद्धारकर्ता की आवश्यकता का एहसास कराया गया। अब विश्वास और प्रेम से वे उस परमेश्वर के साथ बंधन में बंध गए थे, जिसने उन्हें पाप के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। अब वे नई वाचा की आशीषों का मान करने को तैयार थे। पुरानी वाचा के नियम थे, आज्ञा पालन करो और जीवित रहो, जो मनुष्य उनकी माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। यहेजकेल 20:11, लेव्य व्यवस्था 18:5। लेकिन शापित हो वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, व्यवस्था विवरण 27:26। नई वाचा का संस्थापन बेहतर प्रतिज्ञाओं पर हुआ था, पापों की क्षमा और हृदय परिवर्तन करके उसे परमेश्वर की व्यवस्था के सिद्धांतों के साथ सुसंगत कराने के लिए परमेश्वर अनुग्रह की प्रतिज्ञा। जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मस्तिष्क में रखूंगा तथा उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यिर्मयाह 31 आयत 33-34। जो व्यवस्था पत्थर की पटियाओं पर उत्कीर्ण की गई थी, वही व्यवस्था पवित्र आत्मा द्वारा हृदय की पटिया पर लिखी गई। स्वयं की निजी धार्मिकता सिद्ध करने के बजाय हम मसीह की धार्मिकता को अपनाते हैं। उसका लहू हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है, उसकी आज्ञापरता हमारे लिए स्वीकार की जाती है। फिर पवित्र आत्मा द्वारा परिवर्तित हृदय आत्मा के फल लाता है। मसीह के अनुग्रह से हम हमारे हृदयों पर लिखी गई परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे। मसीह का आत्मा हमारे पास होने से हम उसकी जैसी चाल चल सकेंगे। नबी के द्वारा उसने स्वयं के लिए घोषणा की, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। भजन संहिता 40 आयत 8। और जब वो मनुष्यों के बीच था, उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यूहन्ना 8 आयत 29। प्रेरित पौलुस नई वाचा के अंतर्गत विश्वास और व्यवस्था के बीच के संबंध को स्पष्टता से प्रस्तुत करता है। वो कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? परमेश्वर ना करे, वरन हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था न कर सकी, क्योंकि शरीर के कारण वो दुर्बल थी, वो मनुष्य को निर्दोष नहीं ठहरा सकी, क्योंकि अपनी पापमय प्रवृत्ति में वो व्यवस्था को नहीं रख सका। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि हमारे द्वारा जो देह की भौतिक विधि से नहीं बल्कि आत्मा की विधि से जीते हैं, व्यवस्था की आवश्यकताएं हम में पूरी हो सकें। रोमियो 5 आयत 14, 3 आयत 31, 8 आयत 3-4। परमेश्वर का कार्य सर्वदा समान ही होता है, हालांकि विकास के चरणों और उसकी शक्ति के प्रदर्शनों में अलग अलग युगों में मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति के अनुसार भिन्नता होती थी। प्रथम सच्ची प्रतिज्ञा से लेकर कुल पिताओं और यहूदियों के युगों से होते हुए वर्तमान समय तक उद्धार की योजना में परमेश्वर के उद्देश्यों का नियमित प्रकटन हुआ है। यहूदी व्यवस्था की विधियों और अनुष्ठानों में जो उद्धारकर्ता प्रतीक के रूप में होता था, वही उद्धारकर्ता सुसमाचार में प्रकट होता है। उसके ईश्वरीय रूप को ढांकने वाला बादल हट गया है, कोहरा और परछाइयां लुप्त हो गई हैं, और जगत का उद्धारकर्ता यीशु प्रकट हुआ, वो जिसने सिने से व्यवस्था की घोषणा की और मूसा को सांस्कारिक व्यवस्था दी, वही है जिसने पहाड़ी संदेश दिया। परमेश्वर के प्रेम के प्रति महान सिद्धांत जो उसने भविष्यद्वक्ताओं और व्यवस्था के आधार के रूप में निर्धारित किए, वे इब्रानियों को मूसा द्वारा परमेश्वर के कहे शब्दों को दोहराना है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन और पूरी आत्मा और पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6 आयत 4-5। तू अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम रखना। लेव्य व्यवस्था 19 आयत 18। दोनों विधानों में शिक्षक एक ही है, परमेश्वर का अधिकार वही है, उसके शासन के सिद्धांत वही है, क्योंकि सभी उसके पास से आते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब 1 आयत 17।